पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन प्रसारण तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार इस वक्त आप सुन रहे हैं अर्पा रेडियो पर। आइए सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत विषय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह प्रजापति का व्याख्यान।
प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम पर्यायवाची शब्द के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ हैं। पर्यायवाची शब्द कहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया जाना है यह प्रयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रयोग करते समय यह ध्यान अवश्य देना चाहिए कि वाक्य में उन शब्दों का प्रयोग एक सार्थक अर्थ दे सके। विश्व की अनेक भाषाओं में एक ही अर्थ के वाचक एक से कई शब्द हैं। इन शब्दों के अर्थ समान वस्तु, व्यक्ति अथवा भाव का संकेत करते हैं। ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। भाषा विज्ञान में अर्थ संरचना के अंतर्गत पर्यायता के आधार पर शब्दों के अर्थ का अध्ययन किया जाता है। इस तरह पर्यायवाची शब्दों के मामले में हिंदी समृद्ध भाषा है, या इसे यूं कहें कि हिंदी विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है, जिसमें किसी एक विषय के, किसी एक वस्तु के अनेक शब्द हैं। कारण, हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ, जिसकी शब्द संपदा सीधे हिंदी को मिली है। यही परंपरा शब्द संपदा हिंदी को संस्कृत से प्राप्त हुई है। बाद में फारसी, अरबी, अंग्रेजी और कुछ पुर्तगाली, रूसी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी सहित क्षेत्रीय बोलियों भाषाओं से हिंदी की शब्द संपदा बढ़ती चली गई। स्वाभाविक है, जिन स्रोतों से हिंदी शब्द संपदा का विकास हुआ, उससे एक ही शब्द के कई पर्यायवाची शब्द आ गए। जिस भाषा में पर्यायवाची शब्द जितने अधिक होंगे, वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाती है। हिंदी के अधिकांश पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द और क्षेत्रीय बोलियों के शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है। प्रयोग की दृष्टि से यह शब्द हमेशा एक ही स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि इन शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुकूल अलग अलग किया जाता है। पर्यायवाची शब्द का सर्वाधिक प्रयोग कवियों द्वारा किया जाता है, और आप देखेंगे कि उनकी कविता में एक अलग ही लालित्य आ जाता है। कवियों द्वारा कभी कभी काव्य रचना के दौरान लयात्मकता और भाषा अभ्यंजना के लिए भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः पर्यायवाची शब्दों से काव्य लावण्य बढ़ जाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों को देखें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अम्बर तल में। इन पंक्तियों में चारु के स्थान पर सुहावना, यह सलोना, यह सुंदर, और चंद्र के स्थान पर चांद या चांदनी रख लेने से वह काव्य लावण्य नहीं रह जाएगा, जो चारु और चंद्र शब्दों के प्रयोग से आया है। वास्तविकता यह है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना प्रयोगकर्ता की महत्वपूर्ण कला है, या उसकी अपनी एक विशेषता है। वह चाहे रचना में प्रयोग करना हो या वार्तालाप में या बातचीत में कहें। विद्वानों ने पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा दी है। उनमें वासुदेव नंदन प्रसाद लिखते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। स्पष्ट है, शब्दों के अर्थ में समानता हो पर्यायवाची शब्द हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ पर्यायवाची शब्द आगे उल्लेख कर रहे हैं, जैसे अग्नि, इसके पर्यायवाची आग, पावक, अनल, दहन। इसी तरह अतिथि, पाहुन, छत्तीसगढ़ी में उसको पहुना बोल देते हैं, अभ्यागत, मेहमान। इसी तरह असुर, दानव, पर्यायवाची उसका, और जब बहुत रुष्ट होकर किसी को बोलना होता है तो बोलते हैं तेरे राक्षस है, राक्षस। और यदि उसको और तीक्ष्ण रूप से बोलना हो तो दैत्य, निशाचर है? इसी तरह अश्व, अश्व के पर्यायवाची हैं घोड़ा, घोटक, तुरंग, इसे तुरग भी कहते हैं। इसी तरह आकाश के पर्यायवाची हैं गगन, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान। आम, आम का पर्यायवाची हैं रसराज, आम्र या रसाल। इसी तरह आँख, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। इसी तरह आंसू के अश्रु, चक्षु जल, लोचन जल या नेतांबु। इसी तरह इच्छा, इसके पर्यायवाची लालसा, कामना, मनोरथ, अभिलाषा। इसी तरह ईश्वर है, ईश्वर, सभी अपने अपने इष्ट देव को क्या ईश्वर, क्या कोई प्रभु बोलता है, कोई जगन्नाथ बोलता है, कोई जगदीश्वर बोलता है, कोई परब्रह्मा बोलता है, कोई ब्रह्मा बोलता है, कोई जगदीश बोलता है, कोई परमेश्वर बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई स्वामी बोलता है ना, कोई भगवान बोलता है। इसी तरह कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची वस्त्र, चीर, पट। इसी तरह कपोत, कपोत कबूतर पर्यायवाची है, कलकंठ, और हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको परेवा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी और कई लोग भाषाओं में इसको कबूतर को क्या बोलते हैं, परेवा, कपोत। कमल के पर्यायवाची पद्म, सरोज, पंकज, अरविंद, शतदल, परिजात, पारिजात, राजू, अंबुज। इसी तरह कृष्ण के गोपाल, गिरधर, केशव, गिरधारी, गोपीनाथ, घनश्याम, कुबेर, इसके पर्यायवाची धनद, यक्षराज, कित्ररेश, राजराज, धनाधिप, गज, गज के पर्यायवाची हाथी, करी, कुंज, मतंग, हरी, सिंदूर, है ना। इसी तरह गाय, गौ, धेनु, सुरभि, चंद्रमा, शशि, चांद, हिमांशु, निशाकर। इसी तरह पवन, समीर, बयार, वात, वायु, अनिल, पर्वत का देखिए पर्यायवाची शब्द पहाड़, गिरी, तुंग, अचल। इसी तरह पक्षी का खग, विहंग, पखेरु, चिड़िया, शकुंत। इसी तरह पुष्प का फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुहुप। इसी तरह देखें पुत्र का सुत, आत्मज, पूत, बेटा, लड़का, वत्स, तनुज। इसी तरह पृथ्वी का देखें धारा, धरती, भू, अवनी, क्षिति। इसी तरह उदाहरण देखें बादल का, बादल के पर्यायवाची देखिए, मेघ, जलधर, पयोध, वारिद, घन है, बिजली, बिजली के देखिए पर्यायवाची, विद्युत, चपला, दामनी, तड़ित, चंचला है? इसी तरह मछली के, मत्स्य, मीन, मकर, मनुष्य के पर्यायवाची देखिए, मनुज, इंसान, मानव, नर, मानुष, महादेव के पर्यायवाची देखिए, शिव, शंभु, शिव अलग हैं, शंभु हैं, पशुपति, शंकर, नीलकंठ, कैलाशनाथ, त्रिलोचन, रुद्र हैं। इस तरह माता के पर्यायवाची जननी, अंबिका, अम्मा, धात्री, माई, मैया। इसी तरह मित्र के पर्यायवाची दोस्त, सखा, मीत, सहचर, साथी। इसी तरह मृग, हरिण, हिरण, गंधर्व, कुरंग। इसी तरह विष्णु के पर्यायवाची देखिए, पीतांबर, कमलापति, चक्रपाणी, जनार्दन, माधव, केशव, सरस्वती के पर्यायवाची देखिए, वीणापाणी, शारदा, वागीश, विधात्री, वागेश्वरी, वाचा, गिरा। समुद्र के पर्यायवाची सागर, सिंधु, रत्नाकर, निरधि, जलधि, पयोनिधि। सुंदर के पर्यायवाची चारु, ललित, मनोहर, कमनीय है न, रम्य। सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य। सोना के पर्यायवाची कंचन, कनक, सुवर्ण। इसी तरह देखिए सिंह के पर्यायवाची मृगराज, शारदूल, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, शेर है? हाथी के देखिए गज, कुंज, मतंग। रात्रि के पर्यायवाची रात, निशा, यामिनी, रैन, निशी। इसी तरह गणेश का, गणेश के पर्यायवाची देखिए गजानन, लंबोदर, गणपति, एकदंत, गजवदन, विनायक, भवानी नंदन। ऐसे अनेक शब्द हैं हिंदी में जिनके अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से हिंदी विश्व की सबसे संपन्न भाषा मानी जा सकती है। हिंदी के कवि और श्रेष्ठ वक्ता इन पर्यायवाची शब्दों का यथा स्थान प्रयोग कर अपनी संप्रेषणीयता तो बढ़ाते ही हैं, अपने संप्रेषण में एक भावोत्पादकता, भाव जो उत्पन्न होने चाहिए वो भाव संप्रेषण करने में कामयाब हो जाते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सामान्यतः जब श्रेष्ठ वार्तालाप हो या श्रेष्ठ रचना करते हों उस वक्त करना चाहिए। अगर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सार्थक रूप से किया जा रहा है तो यह मानकर चलिए कि उसकी भाषा तो समृद्ध होगी ही, उसकी संप्रेषणीयता में भी अद्भुत प्रभाव देखने को मिल सकेगा। प्रिय शिक्षार्थियों, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप जब भी वार्तालाप करें या लेखन करें तो इन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अवश्य करें, ताकि आपकी भाषा में एक अलग ही लालित्य आ जाए। प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम विलोम शब्द या विपरीत अर्थों वाले शब्दों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी शब्द के अर्थ का बिल्कुल विपरीत अर्थ वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाता है। विलोम अथवा विपरीतार्थी शब्द में ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी शब्द का विलोम अथवा विपरीतार्थी शब्द यदि संज्ञा शब्द या विशेषण है तो उसका विलोम शब्द भी क्रमशः संज्ञा शब्द या विशेषण या विपरीतार्थी ही होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं, जैसे अंधकार का विलोम प्रकाश, अग्र का पश्च, अनाथ का अनुरक्ति का विरक्ति, अनुकूल का प्रतिकूल, अमृत का विष, अस्त का उदय, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, आकाश का पाताल, आगत का विगत, आस्था का अनास्था, आयात का निर्यात, आरोह का अवरोह, आगे का पीछे, इहलोक का परलोक, एक का अनेक। यहाँ ध्यान देना है, सामान्यतः अनेकों लिखते हैं, एक का अनेकों वह नहीं, वह गलत है। एक का अनेक, अनेक शुद्ध है। उत्थान का पतन, उन्मुख का सम्मुख, उपाय का निरुपाय, उग्र का सौम्य, कर्म का निष्कर्म, अंत का आदि, अथ का इति, अपेक्षा का उपेक्षा, अनुराग का विराग, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। कहते हैं अल्पायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु। अंतरंग का विलोम बहिरंग, रुचि का अरुचि, आगम का निर्गम, आलोक का विलोम क्या होगा? अंधकार, आस्तिक का नास्तिक, आधुनिक का प्राचीन, आय का व्यय, आद्र का शुष्क, हाँ, इच्छा का अनिच्छा, इसी तरह एकता का अनेकता, उत्तर का दक्षिण, उत्तम का अधम, है उपकार का अपकार, उच्च का निम्न, कोमल का कठोर, है क्रोध का प्रेम, गुरु का लघु, गुण का दोष, ग्रहण का त्याग, गुप्त का प्रकट, घाटा का लाभ, है जीत का हार, जल का थल, जन्म का विलोम अर्थ हो क्या? मृत्यु, है जय का पराजय, ताप का शीत, तुच्छ का विलोम क्या हो गया? उत्तम। दीर्घ का क्या हो गया विलोम? हर्ष, हर्ष, हर्ष आनंद वाला है, लेकिन ह में हरा हरा की मात्रा है, हर्ष। कठोर का विलोम कोमल, धवल धवल है इसका विलोम श्याम, नरक का स्वर्ग, निंदा स्तुति, इसी तरह बढ़ती का घटती, बुराई का भलाई, भूत का वर्तमान, है कटु का मधु, क्रूर का विलोम का अक्रूर, खरा का खोटा, गर्मी का सर्दी, इसी तरह जागरण का निंद्रा, जड़ का चेतन, जीवन का विलोम मरण, ज्योति का विलोम तम, ठोस का तरल, तरुण का वृद्ध, दुख का सुख, निर्धन का धनवान। इसी तरह अनेक शब्द हैं प्रिय शिक्षार्थियों। यह सामान्यतः हिंदी भाषा में ऐसे शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग करते समय सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ आ सकते हैं। इसलिए सामान्य चर्चा, वार्तालाप या लेखन के दौरान इन शब्दों का प्रयोग भली भांति और शुद्ध रूप से करना सही होता है।
नवीन युग का विश्वविद्यालय मूलाधार रखेगा, जनगण मन में जनहित का अवसर चाव भरेगा। गरल सुधा में परिणत होवे यह विनती है नियंता, कलुष निवारण सुयश संस्कृति रचे नए